फिलहाल तो कंडीशन कंट्रोल में है, बाकी चीजें पेशेंट के होश में आने पर क्लियर हो जाएंगी। कुछ टेस्ट भी होंगे क्योंकि मामला सर का है, पर बच्चे की उम्र भी कम है, इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहे हैं। फिलहाल वो इंजेक्शन की वजह से नींद में है, 2-3 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। उसके बाद उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप सब उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने सारी बात साफ साफ बता दी, फिर वहां से चले गए। सबके तनावपूर्ण चेहरे पर कुछ सुकून उतर आया, पर अभी वो ठीक से इस खुशी को अपना भी नहीं सके थे कि वहां एक जानी पहचानी सी आवाज गूंजी, अर्जुन। सबका ध्यान आवाज की दिशा में गया। सामने कुछ ही कदमों पर निया खड़ी थी। आरवी तो पहली बार उसको देख रही थी, पर उसका बढ़ा हुआ पेट देखकर समझ गई कि यही अर्जुन की वाइफ है। पर जब उसने अर्जुन के चेहरे के भाव देखे तो उसको कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि अर्जुन का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। वहीं अर्जुन को निया के यहाँ आने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए पहले तो वो उसको यहाँ देखकर चौंक गया। फिर जब नज़र शान पर पड़ी, जिसकी आंखें अंगारों सी धधक रही थीं और आंखों में बेइंतहा नफरत कैद किए वो निया को घूरे जा रहा था। अर्जुन ने आंखों से ही निया को जाने का इशारा किया तो वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। अर्जुन तुरंत आरवी की तरफ पलट गया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से बोला, गुड़िया अभी मुझे जाना होगा, शाम को वापस आऊंगा मिलने, तब मुझे मेरी भांजी से भी मिलवाना। आरवी ने हुंकारी भरी और सर हिला दिया, फिर उसको सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, भैया वो भाभी थी? मियाँ के लिए भाभी शब्द सुनकर अर्जुन के चेहरे पर कड़वाहट के भाव उभर आए। उसने हाथ पीछे करते हुए कहा, हाँ बदकिस्मती से अभी तक वो तुम्हारी भाभी है, पर जल्द ही हमारा डिवोर्स होने वाला है। बाकी बातें कभी फुर्सत में बताऊंगा तुझे, या अपने पति से पूछ लियो, शान सब जानता है। आरवी हैरान परेशान सी उसको देखने लगी। अर्जुन कुछ पल ठहरा, फिर आराम से बोला, अपना ध्यान रखियो, ज्यादा रोइयो मत, सब अच्छा होगा, मैं आऊंगा तुझसे मिलने, तब तक अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखियो। आरवी ने सर हिला दिया। अर्जुन ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया, फिर सुभाष जी, सुयश जी और अर्पिता जी तीनों बड़ों का आदर सहित पैर छुआ, उनसे जल्दी जाने के लिए माफी भी मांगी और फिर आने का भी कहा। तीनों ने उसको शुक्रिया किया, जिस पर उसने परिवार में शुक्रिया की जरूरत नहीं कहकर बात खत्म कर दी। फिर शान की तरफ कदम बढ़ाए तो उसने नफरत से अपना चेहरा फेर लिया। अर्जुन के लबों पर व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई, जैसे खुद ही का मजाक बना रहा हो। उसने गहरी सांस छोड़ी और सबसे इजाजत लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट के पास ही निया खड़ी थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसको लिफ्ट के अंदर खींच लिया। लिफ्ट में बस वही दोनों थे। उसकी पकड़ निया के हाथों पर कसी हुई थी, जिससे उसको दर्द होने लगा था। निया ने अपनी कलाई उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए दर्द से तड़पते हुए कहा, अर्जुन हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। होना भी चाहिए, दूसरों को दर्द देने और उनके दर्द को बढ़ाने वाले को खुद को भी उस दर्द का एहसास होना चाहिए। अर्जुन एकाएक गुस्से से चीखा और उसकी आवाज लिफ्ट में गूंज उठी। उसकी धधकती आंख से निया पर टिकी थी। उसका गुस्सा देखकर निया सहम सी गई और घबराकर बोली, अब मैंने क्या किया है? तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या किया है? तो बताओ कि जब जानती थी कि मैं आरवी से मिलने जा रहा हूँ और वहां शान भी होगा और मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने को कहा भी था, तो क्यों आई तुम वहां? एक बार फिर अर्जुन गुस्से से चीख पड़ा। उसकी बात सुनकर निया को भी गुस्सा आ गया। अगर आती नहीं तो क्या करती मैं? एक घंटे से ज्यादा हो गया था मुझे तुम्हारा इंतजार करते करते। तुम जानते हो इस हालत में ज्यादा देर ना तो बैठ सकती हूँ और ना ही खड़ी हो सकती हूँ। इतनी मुश्किल से मैंने एक घंटा काटा, पर तुम नहीं आए तो मुझे आना पड़ा तुम्हारे पास, क्योंकि अपनी बहन के आगे तो तुम मुझे और हमारे बच्चे को भूल ही गए थे। मियाँ की बात काफी हद तक ठीक थी। वहां टेंशन के बीच उसके दिमाग से निया का ख्याल ही निकल गया था। अर्जुन ने एक गहरी सांस छोड़ी और धीमी पर सख्त लहजे में बोला, हमारा नहीं सिर्फ मेरा बच्चा है। निया ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। इसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। लिफ्ट से निकलकर वो बाहर चले गए। कुछ देर बाद दोनों कार में थे। अर्जुन ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, क्या कहा डॉक्टर ने, रिपोर्ट ठीक आई है? हाँ सब ठीक है, बस कुछ दवाइयां बदल दी हैं और ध्यान रखने को कहा है, बाकी तुम खुद फोन करके पूछ लेना, निया ने मुंह फेरे हुए ही जवाब दिया। अर्जुन ने सर हिला दिया और इसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंशु के साथ इस वक्त एक नर्स थी, बाकी किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। सब वहां लगी चेयर्स पर बैठे थे और शान फोन पर किसी से बात कर रहा था।
आरवी गेट के पास खड़ी वहां लगे छोटे से राउंड कार्ट से अंदर बेड पर लेटी अंशु को देख रही थी, जिसका छोटा सा सर पट्टियों में लिपटा हुआ था। उसके घुंघरेले प्यारे प्यारे बाल, जिससे उसे इतना प्यार था और जिसको आरवी इतने शौक से संवारती थी, और वो बहुत क्यूट लगती थी जब उसके करली बाल उसके चेहरे पर आते, पर अब वो बाल नहीं थे, पूरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। दूर से बस आरवी को उसके सर पर बंधी सफेद पट्टियां ही नजर आ रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। शान रेहान से बात कर रहा था, जो रेहान, उसकी फैमिली, अनुपमा जी सब यहाँ आना चाहते थे, पर शान ने उनको समझाकर रोक लिया कि अभी आने का फायदा नहीं, तो अंशु के होश में आने के बाद मिलने आए और चिंता ना करे, यहाँ सब ठीक है। कुछ देर समझाने पर सब मान गए। शान कुछ देर बाद वापस आया तो गेट पर खड़ी आरवी को देखकर उसके कदम ठहर गए। आरवी सुबकते हुए उस शीशे को ऐसे छू रही थी जैसे अंशु के सर पर हाथ फेर रही हो। शान कुछ पल खामोशी से उसको देखता रहा, फिर आकर सुभाष जी के पास बैठ गया, पर ध्यान पूरा आरवी पर ही था। 3 घंटे का इंतजार करना था, पर कोई भी वहां से जाने को तैयार नहीं था। एक एक सेकंड सालू जितना लंबा था और सबको इंतजार था अंशु के होश में आने का। 3 घंटे बीत गए, पर आरवी दरवाजे से एक पल को भी नहीं हटी। अंदर रूम में बेहोश लेटी अंशु की उंगलियां जरा हिली तो नर्स ने तुरंत जाकर डॉक्टर को इन्फॉर्म किया और बाहर खड़े सब अलर्ट हो गए। डॉक्टर ने जाकर अंशु को चेक किया। अंदर रूम में अंशु अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, पर उसके कानों में डॉक्टर और नर्स की आवाजें पड़ रही थी। कुछ देर बाद उसने अपनी बोझिल आंखों को हल्के से खोला, पर सब धुंधला नजर आ रहा था। उसके सूखे होंठ हल्के से फड़फड़ाए और धीमी सी आवाज आई, मम माँ। आवाज बेहद धीमी थी, पर फिर भी डॉक्टर का ध्यान उस तरफ चला गया। अंशु की आंखें हल्की खुली थी और वो कांपते लबों से अपनी माँ को पुकार रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे गिरने से पहले पुकार रही थी। डॉक्टर को जो एक डर था वो भी अब दूर हो गया कि उसके दिमाग में गलत असर नहीं पड़ा है, उसको सब याद है। बाकी टेस्ट बाद में होने थे, फिलहाल अंशु को होश आ रहा था और उसकी कंडीशन ठीक थी, इस बात से उन्हें सुकून था। उन्होंने नर्स को कुछ इशारा किया और खुद अंशु के पास चले आए। नर्स बाहर आई तो सबने उसे घेर लिया, जबकि आरवी सबसे पीछे खड़ी डबडबाई आंखों से सब देख रही थी। नर्स ने एक नजर सबको देखा, फिर पीछे खड़ी आरवी को देखकर बोली, पेशेंट को होश आ गया है और वो अपनी माँ को पुकार रही है। ये सुनते ही आरवी की आंखें छलक आईं, वो व्याकुलता से आगे बढ़ी, पर जैसे ही उसकी नजर शान पर पड़ी उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। सबकी निगाहें उस पर टिकी थी और उसके अनकहे शब्दों और दर्द को वो बखूबी समझ रहे थे। आरवी को ठहरे देखकर अर्पिता जी ने जोर देते हुए कहा,
आप उन्हें क्या देख रही हैं बेटा, आपकी बेटी आपको पुकार रही है, जाइए उनके पास और याद रखिए कि आप अंशु की माँ हैं और कोई आपको उनसे दूर नहीं कर सकता, शान भी नहीं, तो उनको देखना छोड़िए और अंदर जाइए। अर्पिता जी की बात सुनकर आरवी ने उन्हें देखा, फिर आगे बढ़ गई, पर अब भी उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं शान उसको रोक ना ले, लेकिन उसका ये डर बेबुनियाद निकला क्योंकि शान खुद उसके सामने से हट गया। होश में आते ही अंशु ने आरवी को पुकारा और ये सुनते ही आरवी व्याकुल से आगे बढ़ गई। यही काफी था उनके रिश्ते की गहराई बताने के लिए, तो उन दोनों को दूर करने का पाप भला वो कैसे कर सकता था। आरवी तेज कदमों से अंदर चली आई। बेड पर अंशु लेटी हुई थी। मशीनों से घिरी अंशु एकदम बेजान सी लग रही थी। हाथ में ड्रिप लगी हुई थी जिससे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। सर पर पट्टी बंधी थी। चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। होंठ भी सूख चुके थे और उन पर पपड़ी पड़ गई थी। उसका फूल सा चेहरा एकदम मुरझा गया था। अब वो पूरी तरह से होश में थी और आंखें खोलकर अपने पास खड़े डॉक्टर को देख रही थी। आरवी ने जब अंशु की हालत देखी तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फफक कर रो पड़ी। उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर डॉक्टर ने उसे देखा, साथ ही अंशु ने भी निगाहें उसकी तरफ घुमाई और उसको आरवी पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। लबों से धीमी सी आवाज़ निकली, मम्मा। डॉक्टर ने अंशु को देखा और उसको शांत करते हुए आरवी को परेशान निगाहों से देखते हुए बोले, मैडम खुद को संभालिए, अगर आप पेशेंट के सामने ऐसे बिहेव करेंगी तो उनके दिमाग पर जोर पड़ेगा जो उनके लिए ठीक नहीं, और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें आपको वापस बाहर भेजना होगा। डॉक्टर ने हल्की सख्ती दिखाई तो आरवी ने तुरंत अपनी आंसुओं को पोंछ लिया और अंशु के पास चली आई, जो हाथ बढ़ाकर उसको अपने पास बुला रही थी। अंशु ने फिर से उसको पुकारा, जिस पर आरवी ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, हाँ बेटा, मम्मा आपके पास है और अब मम्मा कभी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी। मम्मा बेबी को छोड़कर कहाँ चली गई थी, बेबी आपको ढूंढ रही थी और फिर फॉल हो गई, इतनी सारी चोट लग गई, अंशु ने रोआंसी होकर कहा। उसकी बात सुनकर आरवी की आंखों में नमी ठहर गई। उसने रूंधे गले से कहा, मम्मा आपके लिए खाना बनाने गई थी बेटा,
माफ कर दीजिए, मम्मा की लापरवाही के वजह से आपको इतनी चोट लग गई, पर अब मम्मा कभी आपको खुद से दूर नहीं करेंगी। आरवी ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। आरवी के बाद शान अंशु के पास आया और उसकी भी आंखें नम हो गई। उसने अंशु को खूब लाड किया, बारी बारी सब उससे मिले। फिर नर्स के कहने पर आरवी ने अंशु को जैसे तैसे मनाकर थोड़ा सा दलिया खिलाया जो हॉस्पिटल से ही मिला था, और फिर अंशु को दवाई दी जिससे वो वापस नींद की आगोश में चली गई। अभी वो जितना सोएगी उसको उतना आराम मिलेगा और उतनी ही जल्दी वो रिकवर करेगी।